میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جمع ہوئے، بیٹھے تھے کہ سب سے بڑے گناہ کا ذکر ہونے لگا، لیکن وہ اس کا تعین نہ کر سکے، فکس نہ کر سکے کہ سب سے بڑا گناہ کیا۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رابطہ کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ جب یہ بات ان سب تک پہنچی تو فوراً ان کی طرف سب چل دیے، ان کے گھر پہنچ گئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بڑی توجہ سے سنی، کہ بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا اور اسے اختیار دیا کہ وہ شراب پیے یا کسی کو قتل کرے یا بدکاری کرے یا خنزیر کا گوشت کھائے، ورنہ وہ اسے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے شراب پینا اختیار کر لیا، جب اس نے شراب پی لی تو ہر وہ کام کیا جو وہ اسے کروانا چاہتا تھا۔ بڑی واضح بات ہے، یعنی اس کو کیا کہا گیا کہ یا تو وہ شراب پیے یا کسی کا قتل کرے یا بدکاری کرے، زنا، یا خنزیر کا گوشت کھائے، سور کا گوشت، ورنہ وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو اس نے سب کچھ چھوڑ کر شراب پی لی کہ قتل سے ہی بچ جاؤں، خنزیر سے ہی بچ جاؤں اور بدکاری اور زنا سے بھی بچ جاؤں۔ مگر جب اسے شراب پی تو جس کاموں سے اس نے بچنا تھا وہ سارے کام کر گیا۔ یہ ہے شراب کی نحوست۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا کہ گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے، پانے سے اس کو بلا لیا۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا اور جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کے پاس جا پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا اور وہاں شیشے کا ایک برتن تھا جس میں شراب تھی۔ وہ عورت بولی، میں نے تمہیں کسی قسم کی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم اس لڑکے کو قتل کرو، یا میری جو خواہش ہے، نونا کی خواہش تھی اس کی، تو میری خواہش پوری کرو یا پھر شراب کا ایک جام پی لو، اگر انکار کیا تو میں شور کروں گی اور تمہیں ذلیل اور رسوا کر دوں گی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں تو شراب پینے پر راضی ہو گیا۔ عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی۔ وہ اسی طرح شراب پیتا رہا، یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا بلکہ لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بس تم شراب سے بچتے رہو، اللہ کی قسم بے شک ایمان اور شراب पीना दोनों किसी एक ही शख्स के सीने में कभी जमा नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा करेगा तो ईमान और शराब में से एक दूसरे को निकाल बाहर करेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल इज्तिमा में जमा हैं, और जो मौजू मैंने आज आपके साथ बयान करना है जिस मौजू पर, वो सिर्फ शराब ही नहीं है, वो एक मोटी मोटी एक अजीब किस्म की बुराइयां हैं जिनमें शायद हमारी एक बड़ी तादाद, इस पे स्पेशली नौजवानों की तादाद बुरी तरह मुब्तला है। ये जब अपने मुल्क या अपने शहरों से निकलकर इस तरह के ममालिक की तरफ जब बढ़ते हैं तो आते तो कुछ और ही जज्बा लेकर हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें जिस तरह का माहौल मिलता है और उस माहौल के बाद जिस तरह की उनकी जिंदगी का अंदाज हो जाता है, उसमें क्या शराब, क्या बदकारी, क्या गाने बाजे, क्या जुआ, बहुत अजीब सा हाल है हमारा यहाँ पर, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में, कई जगहों पर, बल्कि जो नहीं बचना चाहता उसके लिए तो बचने की सूरत कहां से निकलेगी, और जो यहां भी बचना चाहे तो अल्लाह ताला उसके बचने के यहां भी इत्तेमाम फरमा देता है, सारे के सारे तो मुब्तला नहीं हो जाते, बचने वालों को भी अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती के साथ एक तादाद है जो इन बुराइयों में, इन गुनाहों में, इन बदकारियों में, शराब जैसे गंदे किस्म की अमल में मुब्तला है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी तवज्जो के साथ जो कुछ बयान करने जा रहा हूं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा नस का धोखा होता है बंदे को कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मगर उससे सोहबत ऐसी रखी हुई होती है, दोस्ती ऐसी रखी हुई होती है, उसमें शराब पीने वाले भी हैं, जुआ खेलने वाले भी हैं, बदकारी करने वाले भी हैं, उल्टी सीधी लड़कियों के पास ताल्लुकात बनाने वाले भी हैं, तो जुआ खेलने वाले भी हैं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। भाई अपने बचते हैं, कब तक बचेगा भाई? तो बुरी सोबत से नहीं बचा, बुराई से कब तक बचेगा? अगर तुझ में बचने की ताकत थी तो तू बुरी सोबत से बच जाता, जब बुरी सोबत ही से ना बच सका तो अब डर कि कहीं ऐसा ना हो कि बुरी सोबत तुझे उस बुरे कामों में डाल दे जिससे तू अब तक बचा हुआ है। अलग अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है, वो कूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ वाबस्ता रहो, अच्छे और नेक लोगों के साथ वाबस्ता रहने का हमें कुरान हुक्म इरशाद फरमाता है। लेकिन अब यहां आकर अजीब और गरीब किस्म की दोस्तियां, फिर एक तादाद जो वेली होती है, कोई कारोबार कामकाज नहीं है, रोजगार नहीं है, फारिग घूम रहे होते हैं, और फिर ऐसी अजीब और गरीब किस्म की लतें पड़ जाती हैं, देखने वाला, पूछने वाला, घर खानदान, भाई बहन, रिश्तेदार, माँ बाप अमूमन नहीं होते, जो होते हैं तो फिर वो भी सारे अपनी जिंदगी के इनका अपना अंदाज है, तो बड़ा ये एक बर्बादी की तरफ जो हमारा माशरा जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप बयान तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह ने चाहा तो नेकी की तौफीक नसीब हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब के मामले में 10 बंदों पर लानत फरमाई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मामले में 10 बंदों पर लानत फरमाई है, शराब बनाने वाले, बनवाने वाले, पीने वाले, उठाने वाले, उठवाने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, इसकी कीमत खाने वाले, खरीदने वाले और खरीदवाने वाले, इन 10 पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अल्लाह की पनाह। दोबारा सुनिए, कौन कौन है शराब से मुतालिक ये 10 लोग हैं। नंबर 1, शराब बनाने वाला। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मुसलमान शराब बनाने की कारोबार में भी पड़ा हुआ है, फैक्ट्री है मुसलमानों की। बदकिस्मती हमारी कि मुसलमान शराब बनाता है, शराब बेचता है, शराब के बार चलाता है, और अगर मुसलमान होने पर लाइसेंस नहीं मिलता तो अपने आप को गैर मुस्लिम लिखकर ये लाइसेंस ले लेता है, और जिसने अपने आप को एक बार गैर मुस्लिम लिख दिया, डिक्लेयर किया, वो ब्लैक बोले कि मेरी नीयत ये थी कि नहीं थी, वो तो उसके मन से वो हाथ धो बैठा। अल्लाह की पनाह। तो 10 लोगों पर लानत फरमाई गई है, शराब बनाने वाला, बनवाने वाला, पीने वाला, उठाने वाला, उठवाने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, इसकी कीमत खाने वाला, खरीदने वाला, खरीदवाने वाला, इन दसों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। अल्लाह की पनाह। इमाम मोहम्मद बिन उस्मान ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबुल कबायर में लिखते हैं, शराबी फासिक व मलऊन होता है, इस पर लानत की जाती है। जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल ने इस पर लानत फरमाई। बस अगर किसी ने शराब बनाने की नीयत से कोई ऐसी शे खरीदी जिससे शराब बनाई जाती है तो वो एक मरतबा मलऊन होगा, और अगर उसने उस शे से शराब तैयार कर ली तो वो दो मरतबा मलऊन होगा, और अगर तैयार करने के बाद किसी दूसरे को पिलाई तो तीन मरतबा मलऊन होगा, यानी तीन मरतबा लानत हुई इसके ऊपर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सोशल मीडिया के आशिकाने रसूल, दुनिया भर में जहां जहां देखने सुनने वाले इस्लामी भाई हैं, स्पेन में, बार्सिलोना में, मुख्तलिफ शहरों से आप आए हैं, हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें शराब की नहुसत से दूर रखे। इसके लिए जरूरी है कि शराब की नहुसत से दूर रहना, शराबियों से दूर रहें, शराबियों की दोस्तियों से दूर रहें, शराब के माहौल से दूर रहें, शराब की दुकानों से दूर रहें, शराब के कारोबार से दूर रहें, इन सब से दूर रहना है। दूर नहीं रहेंगे, आग के करीब जाते हैं तो तपिश आती है, नहीं आती? आती है ना। और अगर तपिश से बचना है, उसकी हरारत से बचना है, उसकी हीट से बचना है तो उसे दूर रहना पड़ता है। गुनाह के करीब रहेंगे तो गुनाह की तपिश आएगी, और ये तपिश हमें अभी फील नहीं होती, अभी तो लज्जत महसूस होती है। बदकारी में लज्जत मिलती है, बदनिगाही में लज्जत मिलती है, इस तरह औरतों को देखने के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहने से लज्जतें मिलती हैं। आंखें जैसे कि बदकिस्मती के साथ, जैसे वो आंखों की गिजा उसको मिल रही है ना, कि आंखों को बदनिगाही के लिए वो घुमा रहा होता है, यहां वहां जा रहा होता है कि कुछ नजर आ जाए। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, औरतों के लिबास, औरतों के अंदाज, अल्लाह की पनाह। अब औरतों को बुर्का तो पहना नजर है, जहां नहीं पहना पाते, नहीं पहना पाते, औरत बुर्का पहने, औरत पर्दा करे, औरत चादर में आ जाए तो क्या बात है मदीने की। जब औरत को पर्दा नहीं कर पाते तो क्या हम अपनी निगाहों को गुनाहों से भरेंगे, अपनी निगाहों की हिफाजत करें? अल्लाह ताला मोमिनों से फरमाता अपनी निगाहों को कुछ नीची रखें। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम। ए हबीब, मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को कुछ नीची रखें। यहां अल्लाह की पनाह, जो हाल है वो बेहाल, बद से बदतर हाल है, और उसमें इतनी बेबाकी है कि कुछ समझ ही ना पड़े कि क्या है क्या नहीं है। मैं इस पर भी कुछ आपको सुनाने जा रहा हूं। अबू दाऊद शरीफ में है, हाथ जीना करते हैं और इनका जीना हराम को पकड़ रहा है, पांव जीना करते हैं और इनका जीना हराम की तरफ चलना है, और मुंह भी जीना करता है और इसका जीना बोसा देना है। अल्लाह ताला आपकी मेरी इन गुनाहों से भी हिफाजत फरमाए, और हमें गुनाहों को देखने से अल्लाह ताला बचाए, कि जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया है उसको देखना नहीं चाहिए, और जिसको ये है कि वो दिखाए भी नहीं खुद को तो उसको दिखाना भी नहीं चाहिए। ना देखने वाला बच रहा है, ना दिखाने वाला बच रहा है। उसको दिखाने का शौक बढ़ गया है, इसको देखने का शौक बढ़ गया है। वो दिखाने के लिए बाजारों में, दावतों में, रिश्तेदारों में बेपत्ता घूम रही होती है, और ये देखने के लिए खानदान भर में, बाजारों में, इधर उधर जगह जगह घूम रहा होता है। सुनिए, हसन बसरी अलैहि रहमान से मुरसलन मरवी है, कहते मुझे ये खबर पहुंची कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखने वाले पर और उस पर जिसकी तरफ नजर की गई अल्लाह पाक लानत फरमाता है। यानी देखने वाला जब बिला उजर कसदन देखे और दूसरा अपने को बिला उजर कसदन दिखाए, इन पर अल्लाह पाक लानत फरमाता है। अल्लाह की पनाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों की दो जमातें ऐसी होंगी जिन्हें मैंने अपने इस अहद मुबारक में नहीं देखा, यानी आइंदा पैदा होने वाली हैं। इनमें एक वो कौम जिसके साथ गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे जिनसे लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म उन औरतों की है जो पहनकर नंगी होंगी, दूसरों को अपनी तरह माइल करने वाली होंगी। इनके सर बुख्ती ऊंटों की तरह एक तरफ झुकी हुई कोहान की तरह होंगे, वो जन्नत में दाखिल ना होंगी और ना इसी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी इतनी दूर से पाई जाती है। अब ये इस रिवायत को सुनकर पढ़कर अब मुश्किल नहीं है समझना कि ये किन औरतों के बारे में तस्करा हो रहा है। ये लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक इन औरतों को शर्म हया आता करे। अगर हमारे घर में खुदा ना खास्ता ऐसा माहौल है तो मर्दों, मैं वालिद से, भाई से, शौहर से, सबसे अर्ज कर रहा हूं, अभी मान जाओ और अपनी औरतों को पर्दा कराओ, इन गैरत दिलाओ, इनको शर्म हया का दर्श दो। अगर आपने ऐसा ना किया, ताकतवर ना किया, कुदरत भर ना किया, अल्लाह ने जितनी तौफीक, ताकत और कुव्वत दी, अगर आपने इनको ना रोका तो हदीस के हुक्म के मुताबिक ऐसा शख्स दयूस कहलाता है। और दयूस का, ये दयूस अरबी का, हदीस का वर्ड है दयूस, और दयूस का उर्दू माना बनता बेगैरत। और हदीस में आता है कि दयूस पर जन्नत हराम है। अपनी बहन को, अपनी मां को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को बेपर्दा देखे, बेशर्मी में देखे, बेहयाई के साथ देखे, और तो समझाएगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, रोकेगा भी नहीं, टोकेगा भी नहीं कि बेटी क्या कर रही हो, बीवी को मना नहीं करेगा। बगैर मना तो दूर की बात है, सजा धजाकर कार की फ्रंट सीट पर बीवी को बिठाकर लेके जाते, दावतों में, पार्टियों में लेकर जाते अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहनों को सजा धजाकर, और इंट्रोड्यूस कराते, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ। हमारे किस्मती से कल्चर है। मैं को खलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन, इसी जमीन की बात कर रहा हूं। अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को दावतों में ले जाते हैं, पार्टियों में ले जाते हैं, इसी तरह के प्रोग्राम्स में ले जाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसा करवाते हैं, इनसे मिली ये मेरी वाइफ है, वो बोलेगा इनसे मिली ये मेरी वाइफ है, एक दूसरे की बीवियों से मुलाकातें कराएंगे, और अगला बोलेगा ओ भाभी बड़ी खूबसूरत लग रही हो, और ये बेगैरत सुन रहा है, बेशरम, बेगैरत, बेहया सुन रहा है कि मेरे सामने एक पराया मर्द मेरी बीवी को इस तरह मुंह पर बोल रहा है। असल में हाथी नहीं है। वो कहते ना कि हया की मौत हो गई है। मैं आपको बताऊं, मौत हुए, इसका जनाजा निकले भी कई अरसे गुजर गए, हया कहां है अब हमारे माशरे में, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने नसीब की है कि वो हया करे, शर्म करे। या तो बेटियां नाच रही है, बीवी नाच रही है, मां नाच रही है, बहने नाच रही है, सारे नाच रहे हैं, और ये माशरे के इज्जतदार कहलाने वाले लोग बैठ के देख भी रहे होते हैं। देखो देखो, वो बाहर निकल के फिर बोलेंगे यार कैसे बेशर्म लोग है यार, ये कोई तरीका है? अरे बेशर्म बोलने वाला आदमी, दो घंटे जो तू बेशर्मी करके जो उधर बैठा था और दांत निकाल के जो हंस रहे थे और बदकिस्मती के साथ मजे ले रहे थे कि हाँ हाँ यार कितना अच्छा नाच गाना हो रहा है, आपको शर्म ना ही हुआ बैठने में? शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये हमारा माशरा नहीं है, इस्लाम का माशरा नहीं है, दीन का माशरा नहीं है। ये बेशर्मी, ये बेहयाई, ये नाचना, ये गाना, ये मौसीकी, ये कंसर्ट, ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये जो कुछ हमारी दावतों में, हमारे घरों में, हमारी पार्टियों में, बल्कि सच्ची बात है इफ्तार के नाम पर भी ये हो रहा होता है, मिलाद के नाम पर भी इसी तरह बेपर्दगियां हो रही होती है। मिलाद जायज, सवाब का काम करना चाहिए, मगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करना चाहिए। इस तरह का जो माहौल हमने बनाया है, शरीयत उसको कैसे इसकी इजाजत दे सकती है? हराम हराम और हराम, सख्त हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और आज हम देखते हैं कि इसकी सजाएं हमें मिल रही हैं। ये जितनी दुनिया भर में आप अपने साथ दूसरों का परेशानियां देखते हो, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत। शिकवा है जमाने का, ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, ठीक है पैसा कमाने आए थे, लेकिन क्या शर्म बेचकर पैसा कमाएंगे? अपनी इस्लामी अकदार को फरामोश करके पैसा कमाएंगे? अपनी इस्लामी तहजीब, अपनी नेशनल वैल्यूज, अपनी इस्लामिक वैल्यूज को कंप्रोमाइज करके पैसा कमाएंगे? ऐसा पैसा दुनिया के किसी कोने में भी कमाया जाएगा, गलती है। और पैसा कमाने के लिए ये करना जरूरी था भी कब? पैसा कमाने के लिए तो जरूरी था, कारोबार करने के लिए जरूरी था, किसी मुल्क में रहने के लिए भी जरूरी नहीं है। क्या आधे नंगे कपड़े पहन लो कि जनाब ये आधा नंगा कपड़ा पहनेंगे, बेहयाई करेंगे, बेशर्मी करेंगे, बेगैरती करेंगे, शराबे पिएंगे, जुए खेलेंगे, जिना बदकारियां करेंगे माजल्ला, तब इस जगह रह सकते वरना नहीं रह सकते? ये किसने कहा है भाई आपको? कौन गन पॉइंट पे आकर हमसे ये गुनाह करवाता है? ये जो कुछ कर रहे हैं सब हमारी नफ्स की शरारत है, हमारी आदतें खराब हो गई हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। मुल्क में रहकर हम बोलते जनाब यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है, भाई इसी माहौल के अंदर आपको दाढ़ी वाला मिल रहा है, इमामे वाला मिल रहा है, नमाजी मिल रहा है, आलिम मिल रहा है, हाफिज मिल रहा है, मस्जिद का इमाम मिल रहा है, क्या इधर नहीं है? इसी माहौल में तो है। अगर माहौल है सबको बिगाड़ा हुआ तो फिर ये क्यों बच गए? अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। पता चला माहौल का मसला नहीं है, मसला हमारा है। हमें गुनाह में मजा आ गया, गुनाह में लज्जत आ गई है, तो हम समझते हैं कि ये सब कुछ हमारा होना चाहिए। मगर प्यारे सब अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह पाक आपकी मेरी मगफिरत करे और हमें गुनाहों से बचकर जीने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। बुखारी शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़े फरमान मौजूद है बुखारी में, जरूर मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो जिना, रेशम, शराब और बाजों को हलाल ठहराएंगे। बुखारी शरीफ के हदीस। मौसीकी से नफरत होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसीकी की आवाज़ दूर से सुनी, अपने कान मुबारक में उंगलियां दाखिल फरमाई थी कि ये आवाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी। मेरे आका फरमाते मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। तो मोबाइल में मौसीकी बजे, टीवी में मौसीकी बजे, चाहे आपकी कार में मौसीकी बजे, चाहे आपकी घड़ी में मौसीकी बजे, चाहे आपके कहीं भी म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक नाजायज है, गाने बजे की हुरमत मौजूद है। किसी की मैयत में बजा के देखो तो पता चलेगा घबरा किसी की घबराहट हो रही है, गलत है तो घबराहट हो रही है ना। अजान की आवाज आती है तो घबराहट होती है। तो ये सब अपने को टेस्टर लगे हुए हैं। शराब की नहुसत से भी अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह ताला हर नशे से बचाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशे वाली चीज हराम है। बेशक अल्लाह ताला ने अहद किया है कि जो शख्स नशा पिएगा उसे तीनतुल खबाल, उसे अल्लाह पाक तीनतुल खबाल से पिलाएगा। लोगों ने अर्ज की तीनतुल खबाल क्या चीज है? फरमाया जहन्नमियों का पसीना और उनका निचोड़, ये पिलाएगा अल्लाह पाक उनको। इसी तरह बदकिस्मती के साथ हमारे एक तादाद है जो बदकारी की तरफ भी बढ़ जाती है। ये सब चीजें गलत है। बदकारी करने वाले को तो ये सोचना चाहिए कि क्या वो इस बात को पसंद करेगा कि कोई ये काम इसकी माँ के साथ करे, इसकी बहन के साथ करे, इसकी बीवी के साथ करे, इसकी बच्चियों के साथ करे। वो खुद जिसके साथ ये फेल कर रहा है वो देखे, वो भी औरत कहीं ना कहीं इसका कोई तो रिश्ता बनता होगा। अपनी हिफाजत करें प्यारे इस्लाम भाइयों, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। एक बूढ़े शख्स के बारे में पता चला कि वो बुढ़ापे में पहुंचकर बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल नहीं काम काज नहीं कर सकता था, बीमार हो गया, बिस्तर पर पड़ गया। उसकी एक जवान बेटी थी और दो तीन छोटे बच्चे थे। अब घर में फाके हो गए, खाने पीने को था नहीं, बाप कमा नहीं सकता था। जवान बेटी ने जब इस सूरत हाल देखी, बहुत कोशिश की कहीं नौकरी मिल जाए, नौकरी भी नहीं मिली। बेटी को शैतान ने वसवसा डाला कि नौकरी तो नहीं मिल रही है, तेरा बदन है, इसको बेचकर पैसे कमा ले। इसने अपने बाप को बताए बगैर घर से बाहर पांव रखा कि जाती हूँ, अपना जिस्म बेचकर पैसे लाती हूँ ताकि भाई बहनों का और बाप का पेट भर सकूं। कहती है मैं सड़क पर गई, रात देर तक खड़ी रही, लेकिन मेरी तरफ किसी ने नजर ही नहीं की। मैं वापस आ गई, रात देर हो चुकी थी। वाली साहब ने मुझसे पूछा बेटी कहाँ गई थी? बेटी ने शर्म से सर झुका लिया, नजरें नीची की और झूठ नहीं बोली, सच सच बता दी। बोला ये हालत थी अब्बा, मैं इसलिए घर से निकली थी। मगर हैरत की बात यह कि अब्बा जान मैं इतनी देर सड़क पर खड़ी रही, किसी मर्द ने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। बाप ये सुनकर गुस्से में नहीं आया, मुस्कुरा रहा था। बेटी ने कहा अब्बा जान आप मुस्कुरा रहे। तो बाप ने जवाब क्या दिया ये सुनिए। बाप जवाब देता बेटी तेरे पर नजर को कैसे उठाता, जब तेरे बाप ने किसी गैर औरत को नहीं देखा तो मेरी बेटी को कोई गैर मर्द कैसे देख सकता है। क्या कमाल का जवाब था ना, कमाल का जवाब था। अपना तो ये कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरी बच्ची बिगड़ गई है, मगर अब्बा जान आप भी जरा अपने आप को देख लो, बिगड़ गए हो सुधरे हुए हो? हमारे सुधरे हुए का एक अलग निजाम है, अलग कॉन्सेप्ट है। ये सुधरा हुआ आदमी, सुधरा हुआ आदमी तो नेक होता है, अल्लाह का नाफरमान सुधरा हुआ कैसे हो गया? हमारे दामन दागदार है। एक गुनाह करता है दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है, हदीस में मौजूद है, दिल पर एक सियाह धब्बा काला नुक्ता लग जाता है दिल पर। फिर गुनाह करता है फिर दिल पर नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है फिर दिल पर काला नुक्ता लग जाता है, हत्ता के गुनाह करता रहता है यहां तक कि इसका दिल काला स्याह पड़ जाता है। अर्ज की गई कि इसकी निशानी क्या है जिसका दिल काला पड़ जाए? फरमाया उस पर नसीहत असर नहीं करती। हमें समझाया जाता है। अच्छा ये बताइए, कोरोना आया चला गया, थोड़ा बहुत अभी भी इसके असर पता चलते हैं, लेकिन कोरोना ऑलमोस्ट जा चुका, अल्लाह पाक करेगा ये वापस मुड़कर ही ना आए, हमारी जिंदगियां नॉर्मल रहे। मुझे बताइए, कोरोना भी इतनी अमवात, इतनी लाशें, इतनी मैयतें, इतने घरों में जनाजे, इतना डर, इतना खौफ, इतनी सब कुछ हुआ, मस्जिदें भर गई। ईमानदारी से बताओ कि हमारी मस्जिदें भर गई क्या? ये दो ढाई साल में नमाजी बढ़ गए क्या? ये दो ढाई साल में फिल्में ड्रामे गाने बाजे बंद हो गए क्या? ये दो ढाई साल के अंदर हराम रोजी कमाने वालों ने हराम रोजी कमाना बंद कर दिया? ये दो ढाई साल में जो घरों पर बैठे रहे, कारोबार बंद रहा, सब कुछ बंद रहा, लोगों ने फिल्मों में नेट के जरिए बेहयाई के रिकॉर्ड कायम कर दिए। अरे कोई तो ऐसे लाओ, इल्ला माशाल्लाह, मैं सबका नहीं कहता, मगर इन दो ढाई सालों में जो नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए बुराइयां नहीं करता था, वो भी उन बुराइयों में पड़ गया। अरे मौका था दो ढाई साल, नहीं जनाब, कारोबार है, रोजगार है, वक्त नहीं मिलता। दो ढाई साल तो वक्त ही वक्त था, कुरान पढ़ लेते, कुरान सीख लेते, नमाज सीख लेते, वजू सीख लेते, गुसल सीख लेते, अल्लाह उसके रसूल की दीन की बातें सीख लेते। दो ढाई साल इसी में गुजर गए, ना जाने कब हालात सही होंगे, कब हालात सही होंगे। इस वक्त में जिनसे बात कर रहा हूं, अगरचे आप और मैं कोरोना वाली मौत से बच गए, मगर ये याद रखो, मौत से नहीं बचे, कोरोना वाली मौत से बच गए। अल्लाह बचा कर रखे, अल्लाह आफतों से बचा कर रखे, खैर वाली जिंदगी अता करे, आफियत वाली जिंदगी अता करे। मगर मैं तो कहीं डराने के ले रहा हूं, गुनाहों की वजह से जो परेशानी और मुसीबतें आती हैं, इनको समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हदीस सुनिए, इब्रत वाली हदीस सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आली शान है, जब मेरी उम्मत 15 बातों को अपना लेगी तो वो मुसीबतों में घिर जाएगी। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदतें कौन सी हैं? फरमाया, जब गनीमत को जाती दौलत, अमानत को गनीमत, जक़ात को तावान समझा जाने लगेगा, आदमी अपनी बीवी की इताअत और माँ की नाफरमानी करेगा, अपने दोस्त से अच्छा सुलूक और बाप से बदसुलूकी करेगा, मसाजिद में आवाजें बुलंद होंगी, जलील तरीन शख्स उनका हुक्मरान बन जाएगा, इंसान के शर के डर से उसकी इज्जत की जाएगी, शराब पी जाएगी, रेशम पहना जाएगा, गाने बजाने वाली लोंडियां रखी जाएंगी, घरों में गाने बजाने के आलात रखे जाएंगे, इस उम्मत के बाद वाले पहलों पर लान तान करेंगे, तो उस वक्त लोगों को चाहिए कि सुर्ख आंधी या जमीन में धंसने या चेहरों के मस्क यानी बदल जाने का इंतजार करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरी उम्मत के कुछ लोग गुनाहों, गुरूर, तकबुर, लहू अलईब में रात गुजारेंगे और सुबह इस हाल में करेंगे कि हराम को हलाल जानने, गाने बजाने वाली लोंडियां रखने, शराब पीने और रेशम पहनने की वजह से मस्क होकर बंदरों, खिंजीरों की सूरत में बदल दिए जाएंगे। एक और रिवायत हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत का एक गिरोह खाने पीने, लहू और लईब में रात गुजारेगा, लेकिन सुबह वो लोग उठेंगे तो बंदर और खिंजीर बन चुके होंगे। इन्हें जमीन में धंसने और आसमान से पत्थर बरसने के वाकियात पेश किए जाएंगे, यहां तक के लोग सुबह उठेंगे तो कहेंगे, आज रात फला कबीला धंसा दिया गया और आज रात फला शख्स का घर धंसा दिया गया, इन पर जरूर आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे, जैसा कि कौम लूत के कबीलों और घरों पर बरसाए गए। इन पर जरूर तबाह करने वाली ऐसी आंधी भेजी जाएगी जिसने कौम आद को इनके कबीलों और घरों से हला कर दिया था, और ऐसा इनके शराब पीने, रेशम पहनने, गाने वाली लोंडियां रखने, सूद खाने और कत्ते रहमी करने की वजह से होगा। शोबुल ईमान की मैंने हदीस सुनाई है, ये हमारे आका गए बताने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदियां पहले ये इरशाद फरमा कर गए थे। अभी जो मैंने बयान किया, आपके दिमाग में, आपके तस्वुर में चीजें नहीं आ रही होगी कि ये जो कुछ ये बयान हो रहा है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान किया, आज कितनी चीजें हमें पता है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या घरों में आलात मौसीकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखे? किसी घर में पियानो रखा है, किसी घर में गिटार रखा है, किसी के घर में तबला रखा हुआ है, किसी घर में क्या रखा हुआ है? टेंशन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि ये जो कुछ हमें रख रहा हो ये है क्या? यानी कमाल की बात है, इश्क रसूल का दम भरने वाला, खुद को आशिक रसूल कहने वाला, خود کو عشق رسول میں یہ کہنے والا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق رسول کی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے پیارے رسول، رسول مقبول، بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول جن پر ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اولاد سب قربان، یہ فرمائے کہ مجھے آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومینٹ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، یہ عشق رسول کی بات کرنے والے کو پتا نہیں کہ جس میوزیکل انسٹرومینٹ کو میں نے گھر میں رکھا ہے یہ مصطفیٰ کریم کو پسند نہیں ہے، یہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے، یہ نماز کرنے والے کو پتا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، یہ نماز قضا کرتا ہے مگر یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ اس نماز کو قضا کرتا ہے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی محبت کی باتیں کرتا ہے، وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، کیا ہو گیا ہے ہم کو، کیا ہو گیا ہے غلام رسول کے دم بھرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ہمارے اندر وہ حرارت نہیں آتی، کیوں ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی نہیں جاگتی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کدھر پہنچ گیا ہوں، وہ خوف خدا دل میں کیوں پیدا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مرتبہ پر فائز ہیں مگر یہ شروع میں اس ماحول میں نہیں تھے، وہ ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، یہ رات بھر لڑکی کے گھر کے نیچے کھڑے رہے کہ اس کی زیارت ہو جائے گی، دیدار ہو جائے گا، رات کا قصہ گزرا، اذان کی آواز آئی، دل میں چوٹ لگی، رات بھر اس کے لیے کھڑا رہا، رب کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تو نادا نے کہاں پہنچ چکا ہوتا، اسی وقت توبہ کی اور ولایت کی منزلیں طے کرنا شروع ہو گئے۔ لمحے بھر کی چوٹ لگتی ہے پیارے سامی بھائیو، لمحے بھر کی چوٹ لگتی ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں نماز کیوں قضا کر رہا ہوں، میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں، میں گانے بازے کیوں سن رہا ہوں، یعنی میں بھول جاتا ہوں کہ کان میں کانوں کو گناہوں سے بھرنے والے کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، آنکھوں کو حرام سے بھرنے والے کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، کیا مجھے جہنم کا عذاب یاد نہیں آتا، دنیا میں کی یہ مصیبتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کیا ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اچھا ہمارا یہ حال ہے میرے پیارے سر بھائیو سمجھیے، ہمارا یہ حال ہے کہ 20-25 سال کے بعد جو ہمارے بچے جوان ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ آج ایک بہت بڑی تعداد سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ اس پورے مہینے میں کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے، چاہے ایک سال میں کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے، ارے اپنی بیٹی کو پوچھو جس کے جہیز میں آپ نے قرآن پاک دیا تھا، اس کو پوچھو بیٹی وہ جو خوبصورت سا قرآن جہیز ایڈکشن کے نام پر جو خوبصورت سی پیٹی میں ڈال کر میں نے جو آپ کو بیٹا جہیز میں جو تحفے میں دیا تھا اس قرآن کو کتنی بار کھول کے پڑھا، تو بیٹی بولے کہ ابا جان وہ قرآن وہ کون سی پیٹی تھی، کدھر پیٹی تھی، بیٹا وہ الماری کے اوپر رکھی ہوگی، اچھا 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 ابا جان وہ تو میں نے دیکھا نہیں کئی سال ہو گئے، وہ نکالے گی آپ کی بیٹی نے بھی قرآن نہیں دیکھا ہوگا، قرآن نہیں پڑھا ہوگا، یعنی سوچئے سوچئے اس وقت ہم قرآن دیکھ نہیں رہے، قرآن کھول نہیں رہے، قرآن پڑھ نہیں رہے، آپ کو مجھے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات کی نسلیں قرآن سامنے ہو تو یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ اللہ کا کلام پاکیزہ قرآن ہے، ڈر نہیں لگتا ہم کو یار، اور یہ کوئی میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، نہ انہونی بات نہیں کر رہا، میں چند سالوں پہلے فرانس میں بیٹھا تھا، بیان تھا ہمارا پیرس میں، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے تو کچھ عربی نوجوان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عربی نوجوان ساتھ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، نیکی کی دعوت ہے جو بھی ہمارا ایک انداز ہے، اب یہ کی بانے انہوں نے خود مجھے کہا جو ان کی گفتگو تھی جس کا نتیجہ ہم نے نکالا جس کی انہوں نے تصدیق کی، یہ عربی نسل عربی تھے عربی قوم، اس وقت وہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتے، 100-150 سال ہو گئے ان کی نسل آ رہی ہے، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے، عربی نسل ہیں، ہمیں اپنے بارے میں نہیں ڈرنا چاہیے، اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیا اولاد کو صرف پیسہ دے کر جانا ہے، کاروبار دے کر جانا ہے، بینک بیلنس دے کر جانا ہے کہ بیٹا یہ روح تمہارے باپ نے بڑی محنت سے کمایا، بڑی محنت سے پیسے جمع کیے ہیں، ذرا سنبھال کے رکھنا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے ہماری اولاد اور گھر بار کی تربیت کے تعلق سے سوال کیا تو پیارے اسلامی بھائیو کیا جواب دیں گے، جناب ہم تو کمانے میں لگے ہوئے تھے، گھر والوں کی تربیت کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی پتھر ہیں، اللہ کی پناہ، نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم کچھ بچکنے میں کامیاب ہو بھی گئے، ماحول نے اللہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو شرابی بنا دیا، हमारे नौजवानों को नशे का आदि बना दिया, हमारे नौजवानों को जुआरी बना दिया, हमारे नौजवानों को शराब का आदि बना दिया। बदकिस्मती के साथ बदकारियां करते फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बदकारियों के मौके। अब मस्जिद कितना बिगड़ना है, कितना खराब होना है, आओ प्यारे इस्लाम भाइयों मिलकर इस माशरे को बिगड़ने से बचाएं। ये सिर्फ अफसोस करने के लिए मैं बयान नहीं कर रहा, कुछ हरकत पैदा करनी चाहिए हमारे अंदर, हमें कुछ करंट लगना चाहिए। करंट भी वही लगता है जहां थोड़ा वो पावर तो, जहां फ्यूज हो जाए फिर करंट भी नहीं लगता। मैं माफी चाहता हूं आपसे। एक बुजुर्ग अले रेवा से किसी ने कहा कि हुजूर क्या बात है, हमारे दिल ऐसे सोए हुए हैं कि उठते ही नहीं है। आप फरमाते हैं अगर दिल सोए हुए होते तो ठोकर लगती तो उठ जाते, दिल मर चुके हैं तभी नहीं उठ रहे, ये मुर्दा ठोकर से भी नहीं उठता। अपने दिलों का हमको इलाज करना है, हमें डर लगना चाहिए, हमें अल्लाह से डर लगना चाहिए, हमें गुनाहों से डर लगना चाहिए। मेरे नौजवानों आपको बचना है, ये माहौल हमारा नहीं है, हमारा माहौल तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो माहौल अता फरमाया, जो बातें अता फरमाया वो हमारा माहौल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के तालु से फरमाया, जिसके हया नहीं उसका जो जी चाहे करे, और हया जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है, मेरा आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें शर्म हया का पेकर बनना है, हमें अपनी निगाहों को बचाना है, हमें गुनाहों से बचना है, हमें अल्लाह के नाफरमानों से दूर रहना है, और हमें अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करना है। और अगर खुदा ना खासा, खुदा ना खासा ऐसा ना किया तो, एक सुनिए, एक बुजुर्ग फरमाते कि मेरे एक बेटा फौत हो गया, मेरे एक बेटा फौत हो गया, दफन करने के कुछ दिनों बाद मैंने उसे ख्वाब में देखा, उसके सर के बाल सफेद हो चुके थे। बेटा फौत हुआ था और उसके सर के बाल सफेद हो चुके थे। मैंने पूछा मेरे बेटे मैंने तुझे दफन किया था तो तू बच्चा था, ये बूढ़ा कैसे हो गया? उससे बताया ए मेरे वालिद, मेरे करीब एक ऐसे शख्स को दफन किया गया है जो दुनिया में शराब पीता था, उसकी कब्र में जहन्नम की आग इस शिद्दत से भड़की के गर्मी की शिद्दत से हर बच्चा बूढ़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर और हमें गुनाहों से बचकर जीने की तौफीक अता फरमा, और हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाएं, हमारी नमाजें दुरुस्त हो जाएं, हमारी इबादत दुरुस्त हो जाए, और हम ये गुनाहों और बदकारी से बचकर एक काश जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएं। एक बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं, इन्होंने बड़ा प्यारा एक तबसरा किया, मैं आपके सामने तबसरा रखना चाहता हूँ, ये एंडिंग है। वो एक चोट करने के लिए कि तरक्की याफ्ता दुनिया के ताल्लुक से बयान करते हुए लिखते हैं, जहां शराब पीना फैशन और शराब को सेहत की जमानत समझा जाए वो तरक्की याफ्ता माशरा कहलाता है, जहां जुआ खेलना सोसाइटी के आला फर्द होने की पहचान हो वो तरक्की याफ्ता माशरा कहलाता है, नाच रक्स उछल कूद शोर शराबा नौजवान लड़की और लड़कियां आपस में मिलजुल के जो नाचे कूदे बेहयाई और बेशर्मी करें ये तरक्की याफ्ता माशरा कहलाता है। तालीम के नाम पर बेहयाई और बदतमीजी और बद अखलाकी को परवान चढ़ाया जाए ये तरक्की याफ्ता माशरा को सोसाइटी कहलाती है। रात गए देर तक लौटते हर नौजवान लड़का रात को मनपसंद लड़की अपने साथ लेकर घर आए इसको कहते हैं तरक्की याफ्ता माशरा, या लड़की क्लब से लौटते हुए साथ अपने नौजवान दोस्त का चेक चेक कर घर में तारुफ कराए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और माँ बाप कुछ भी ना कह सकते हो, इसको कहते तरक्की याफ्ता माशरा। जहाँ शादी ब्याह खानदान और मुख्तलिफ मौके पर शरीयत का खून किया जाए खुशियों के नाम पर इसको कहते हैं तरक्की याफ्ता माशरा। और एक बात दिल थाम कर सुनिए, इस तरक्की याफ्ता माशरे में अब जवान लड़कियां कवानी लड़कियां माएं बन रही, क्या ये तरक्की इसको कहते हैं? ये तो बेहयाई है बेशर्मी है बेगैरती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत माशरा में दिया, औरत को इस बात की कोई टेंशन ही ना रहे कि मुझे कोई मर्द हवस का निशाना बना सकता है, कमाने वाले को टेंशन ही ना हो कि मेरा कोई माल पैसा खा सकता है, अमानत के ताल्लुक से दियानत के ताल्लुक से शर्म के ताल्लुक से हया के ताल्लुक से हुकूक के ताल्लुक से ادب کے تعلق سے، احترام کے تعلق سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہے نا ادب، اخلاق اور کردار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے کی طرف ہمیں بلاتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کیا ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ، ہماری زبان سے مسلمان محفوظ؟ ہم لڑتے نہیں ہیں، مگر زبان سے جو تکلیفیں پہنچاتے وہ گھر کے اندر بیوی کو برا بلا کہتے ہیں، بیوی شور کو برا بلا کہتی ہے. گھر کے اندر بھی کہاں سکون ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو؟ بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا، گھر میں بھی بے سکونی ہے. ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں کہاں سکون ملتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، سب کا نہیں کہتا، لیکن گھر میں جاؤ تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. بیوی کا منہ دیکھو تو تربوز کی طرح بھلا ہوا ہے، اور یہ آدمی جاتا ہے تو اس کو دیکھو تو جناب اس کی تو لوڈ شیڈنگ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی لبوں پر کوئی ہے ہی نہیں کچھ. اولاد ڈرتی ہے کہ ماں باپ کچھ بول دیں گے، ماں باپ ڈرتے اولاد کا بول دے گی، بیوی ڈرتی ہے کب پتہ نہیں طلاق دے دے گا، شوہر ڈرتا رہ جائے گا کھلا مانگ لے گی. عجیب ٹینشن سا ہوا ہوا ہے، عجیب سی پریشانی سی ہوئی ہوئی ہے. گھر میں جاؤ تو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جاتے کچھ نہ کچھ طوفان بدتمیزی آئے گا، عورت کہہ رہی ابھی آئے گا تو ابھی جا کر تماشا کرے گا. یعنی عجیب سا حال ہے گھر کے اندر. یہ ساری بے چینیاں، ٹینشن، بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، یہ سب ہمیں ڈراتی نہیں ہے چیزیں یار، کہ آؤ یار کچھ اچھائی کی طرف چلتا. اب جو زندگی گزری ہے اس نے کیا دیا ہم کو؟ پریشانی دی ہے. آؤ ابھی دعوت اسلامی کے کہنے پر آ جاؤ نا آگے، اور یہ سارے گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر آپ نیکی کی طرف، ہم سب نیکی کی طرف آئیں تو صحیح، نماز کی طرف آئیں، پرہیزگاری کی طرف آئیں. امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دار دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر آخرت کو جو فراموش کر بیٹھتا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے. بات بہت پتے کی تھی، گہری بات ہے. دنیا دار دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر جو آخرت کو بھلا بیٹھا، بھائی کیا کریں ہم لوگ؟ آخرت کو بھلا بیٹھے، قبر میں کیا ہوگا، نظام میں کیا ہوگا، ایمان سلامت لے کے جاؤں گا نہیں جاؤں گا، محشر میں کیا ہوگا، جہنم کا حکم ہوگا، جنت کی سعادت نصیب ہوگی، کوئی سوچ ہی نہیں ہے. نماز آئی، وقت آیا چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے. سنتوں کو اتنا چھوڑ رہے اللہ کی پناہ. تو زندگی ہماری آخرت کی تیاری کی طرف ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے. یعنی جہاں مرنا ہے وہاں کی تیاری ہے، اور جہاں مرنا نہیں وہاں کی کوئی تیاری نہیں. سوچتے نہیں کہ ہمیں ایک دن قبر میں اتار کر سارے آگے پیچھے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ قبر میں اتارنے کے مرتا ہے اس کے لیے بھی چندہ ہوتا ہے. بھیا اب کیا کریں، کیونکہ اتنے سال گزارنے کے بعد بھی اگلا اتنا پیسہ بھی نہیں رکھتا کہ اس کی قبر کو، اس کے اندر اس کو قبر میں دفن کیا جا سکے. یہ حال ہے. پھر باہر بھیجنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو ملک بھیج دو، ملک بھیجنے کا خرچہ الگ. تو ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ملک بھیجنے سے اچھا یہی دفن کر دو بھائی، لاش کو میت کو دینا، پھر ہسپتال، تو اس کی باڈی کے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بلکہ دعا یہی کرتے ہیں نا، اللہ مدینے میں موت دے دے یار، مدینے میں مرے بس. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، پردیس میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. اللہ کرے مدینے میں موت آ جائے، تمنا بھی یہی ہونی چاہیے. اللہ پاک آپ کو مجھے گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. شراب، جوا، مطلب یہ ایک شرابی جواری آدمی ہے، یہ سنا ہے نا آپ نے، ایک ساتھ بولتے ہیں، یہ چیزیں ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، شراب پینے والا جلدی جواری بھی بن جاتا ہے، جواری، کیونکہ جب شراب پیتا ہے تو اس کام کاج کے لائق نہیں رہتا، روزگار چھوٹ جاتا ہے جب نشوں میں پڑ جاتا ہے، جب الٹی سیدھی لتوں میں پڑتا ہے تو وہاں بھی اس کو خرچہ چاہیے ہوتا ہے، نوکری چلی گئی، کاروبار چلا گیا، اٹھ سکتا نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب پیسہ چاہیے، جوا کھیلے گا، جب جوا کھیلے گا تو گیا. بدکاری کرنی ہے پیسہ چاہیے، جوا کھیلنا ہے پیسہ چاہیے، شراب پینی ہے پیسہ چاہیے. یہ ساری پھر اس طرح کی مافیا کے ہاتھ میں آ جاتی ہے ہماری جنریشن، اور مافیا اس طرح ایکٹیو ہے، مافیا ہاتھ مطلب کہتے ہیں نا دو کا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی صورت یہ نوجوان آئے اور ان کا کاروبار چلے. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم بھی بچے رہے، ہماری اولاد بھی بچی رہے، اور سارے کے سارے مل جل کے نیکی کے کاموں میں لگے رہے. تو اپنے گھر کے اندر درس فیضان سننا شروع کریں، نیکی کی دعوت کا کام شروع کریں، مدری چینل ہی صرف دیکھیں، انشاءاللہ اس طرح کا ماحول بنائیں گے تو اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بچے رہیں گے. اور نماز پڑھیں پیارے اسلام بھائیو، نماز درست پڑھنی ہے، اور نماز سیکھ لیں. ایک ہفتے میں، تین دن میں، چار دن میں، تین دن کے مدنی قافلے میں آئیں، نماز سیکھ لیں. یہ قرآن کہتا ہے نماز برائیوں بھی حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز روکتی ہے برائی و بے حیائی کے کاموں سے. میں اپنے مبلغین کو بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسلامی بھائیوں کی نمازیں درست کر دو, نماز اس کو درست کر دے گی. ہم صرف نماز درست کرنے پر زور دیں, کیونکہ ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتی ہے مگر اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی. سجدہ, رکوع, تلاوت, طہارت نہیں. ہم وضو خانے پہ دیکھتے, اس کو وضو کرنے نہیں آتا تو بیچارے کو غسل کرنے کہاں سے آتا ہوگا. کپڑے ناپاک ہو جائے پاک کرنے نہیں آتا. قرآن کھولو تو دیکھ کے صحیح پڑھنے نہیں آتا تو نماز کیسے درست ہوگی پیارے اسلام بھائیو؟ رکوع کہاں سے درست ہوگا, سجدہ کیسے درست ہوگا, سیکھا ہی نہیں تھا. تین دن مدنی قافلوں کے نام پر, نماز سیکھنے کے کورس کے نام پر, کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے 3, 7, 12, 1 مہینہ وقت دیں. کووڈ نے بھی تو گھر پہ بٹھایا تھا نا پیارے اسلام بھائیو, بیٹھ ہی گئے اس میں تو کچھ جس سے کیا اسے کیا, باقی اب کیا کیا. تو اللہ کے دین کی طرف آئیں گے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. یعنی جو دنیا سنوارتا ہے نا اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہم دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں, آخرت کو نقصان پہنچ رہا, ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ بات اس لیے جلدی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی وقت بھی موت آئے گی, کسی وقت بھی آپ اور میں مریں گے. آپ کا میرا وقت, میں مرنا تیرا, زندہ کون رہے گا؟ باقی رہنے والی ذات اللہ واحدہ لا شریک کی ہے. ہم سب کا مرنا ٹھہرا, آج آتی ہے کہ کل آتی ہے, ابھی آتی ہے کہ دیر سے آتی ہے, مگر موت نے آنا ضرور ہے. قبر میں جا کر کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے رسول کو؟ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے؟ تیاری ہے, تیاری کریں. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. تو اللہ کرے کہ ہم یہ غنیمت جان لیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں ذلتوں کا خوب چرچا کروں.